Godlywood Studios presents ब्रह्मकुमारीज पॉडकास्ट। जिंदगी बने आसान।
नमस्कार दोस्तों, ओम शांति। स्वागत है आप सभी का हमारे प्रोग्राम जिंदगी बने आसान में। दोस्तों, हमारी ज़िंदगी में कुछ ऐसे छोटे बड़े डर होते हैं जो हमें ज़िंदगी को खुलकर जीने में कहीं ना कहीं रुकावट लाते हैं। हम चाहते तो हैं कि ज़िंदगी हमारी खुशियों से भरी हो, लेकिन कई बार ये इनसिक्योरिटीज़ हमें रोकते हैं। आज हम जानेंगे कि किस तरह से एक ब्रेक फ्री लाइफ जिया जाए, अर्थात ज़िंदगी वो जो हम हमेशा से चाहते थे। इसके बारे में जानने के लिए आज हमारे साथ हैं डॉक्टर अवधीश शर्मा जी। ओम शांति ब्रदर, वेलकम टू आवर शो।
ओम शांति
ब्रदर। हमारी पूरी जर्नी चलती आ रही है इमोशंस के ऊपर। हमने पहले जो इमोशन जिसे पूरी तरह से हमारी ज़िंदगी से बाहर निकालने में आप हमारी मदद कर रहे हैं वो है फियर। उसमें हम लास्ट एपिसोड में हमने कवर अप करने की थोड़ी सी कोशिश की थी, जिसे मैं आगे कंटिन्यू करना चाहूँगी कि किस तरह से जॉब्स के अंदर या कोई भी प्रोफेशन के अंदर हम एक फियरलेस ज़िंदगी जिए। जो एक इनसिक्योरिटी रहती है कि शायद मेरा जॉब ना चला जाए, या मेरा बिजनेस ना डूब जाए, या मेरे पैसे ना डूब जाए, या मेरे शेयर्स ना डूब जाए, ये बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं जो हमें हमेशा डर में जीने पर मजबूर कर देते हैं। क्या किया जाए?
ज़िंदगी में कोई गारंटीज नहीं है, कल की भी गारंटी नहीं, लेकिन फिर भी हम कोशिश करते हैं कि आज के समय जिस प्रकार का आंकलन है उसके हिसाब से आगे बढ़कर जो भी बाहरी सिचुएशन आएगी उसका मुकाबला कर सके। तो एक्चुअली बाहरी सिचुएशन क्या होगी इसके बारे में, और इसका सबसे बड़ा एग्जांपल जो आपने अभी शेयर्स की बात की, मालूम नहीं कि कल बढ़ने वाला है कि कम होने वाला है।
एब्सोल्युटली
6 महीने में कहाँ जाएगा? आपने जो अगर पूरा इंडेक्स भी आगे बढ़ जाएगा, आपके वाले अगर डूब जाएंगे आपके लिए तो डूब ही गया।
Exactly.
तो उसी प्रकार से कोई भी चीज़ अगर हम करना चाहते हैं उसकी प्रोजेक्शंस हो सकते हैं। उसमें दो चीज़ें हम अपनी तरफ से आसानी से कर सकते हैं। एक कि मैं उसके लिए पूरी तरह से प्रिपेयर्ड रहूं, यानी मेरी जो स्किल्स हैं और मेरी जो उसके बारे में जानकारी है वो पूरी रहे। दूसरी कि अगर वो चीज़ उस प्रकार से नहीं चल रही तो मेरे अंदर फ्लेक्सिबिलिटी हो। फ्लेक्सिबिलिटी भी ज़िंदगी में एक बहुत बड़ी वैल्यू है कि बाहरी सरकमस्टांसेस के हिसाब से मैं अपने को ढाल लूँ। एक बड़ा ताड़ का वृक्ष होता है, जब तेज़ तूफान आता है तो सबसे पहले गिर जाता है, और जो दूसरे हैं जो कि थोड़े से मुड़ जाते हैं तो मुड़ने की वजह से बच जाते हैं। तो हमारे में अगर फ्लेक्सिबिलिटी है ये देख के कि बाहरी सिचुएशन क्या है, आज उसके हिसाब से हम रिस्पॉन्ड करें और कल जब चीज़ें बदलेंगी तो उसके हिसाब से बदल जाएंगे। मुश्किलें क्या आती हैं कि इस स्टेज पर कई कारणों से, क्योंकि हम सालों से अपने आप को एक प्री प्रोग्रामिंग कर रहे हैं कि इस चीज़ के होने के बाद नेक्स्ट स्टेप वो होना ही चाहिए, और वो जो प्रोग्रामिंग है वो काम आमतौर पे मेरी अपनी नहीं होती, वो दूसरों की होती है, दूसरों के साथ कंपेरिजन्स की होती है, या दूसरों ने जो मुझे कहा कि मुझे इस प्रकार से जाना चाहिए उसकी होती है, या ये जॉब मेरे लिए सूटेबल है इसकी होती है। एक व्यक्ति का जीवन बहुत लंबा है अगर हम एवरेज भी देखें, और एवरेज काम करने का जीवन बहुत लंबा है। तो अगर हम कहीं से शुरुआत करें और उसमें शुरुआत करने के बाद थोड़ी सी महारत हासिल करें तो हम इस तरह से जाएंगे, लेकिन अगर हम कोशिश करें कि हम यहाँ से शुरू होंगे और ऐसे ही होते रहेंगे तो शायद मुश्किल हो जाएगा। एंड इसके लिए मेरे ख्याल से जब हम पढ़ रहे होते हैं तो उस चीज़ को प्रैक्टिकल लाइफ में कैसे लगाना है उसकी अगर हमें या ट्रेनिंग मिलती है या कोई बड़े हमारे हैं जो कि हमें उसके बारे में गाइड कर सकते हैं, क्योंकि इस उम्र में जो हमने पढ़ा और जो प्रैक्टिकल रूप से उसको लगाना है दोनों में फ़र्क आ जाता है। उसके लिए हमें ज़रूरत होती है कि पहले 3 से 5 वर्ष में कहूँगा आप उसे एक अप्रेंटिसशिप का पीरियड समझें।
ओके।
तो उसमें अगर आपकी एक्सपेक्टेशन कम होगी, क्योंकि आप सीख रहे हैं, और सच्चाई यही है, लोग समझते हैं कि पढ़ने के बाद वो एकदम तैयार है, लेकिन जब आप किसी काम को करना शुरू करते हैं, चाहे अपना हो चाहे किसी जॉब में हो, तो रियल लाइफ में जो स्किल्स हैं उनको कैसे लगाना है, दूसरों के साथ चल के बॉस की सुन के या कस्टमर्स की बात को समझ के, मार्केट फोर्सेस को देख के उसके हिसाब से कैसे एडजस्ट होना, वो भी एक स्किल है जो कि सिर्फ प्रैक्टिकल में ही हो सकती है। तो वो 3 से 5 वर्ष रखें इस पीरियड के लिए जिसमें कि आप उस चीज़ को सीख रहे हैं। जब वो होना शुरू होगा तो काफ़ी हद तक आपको अपनी जो आकांक्षाएँ हैं वो कितनी ज़्यादा थी या कम थी, या आपने असल में कितना सीखा। कई बार ये भी देखा जाता है कि कुछ लोग जो कि एक BSc की डिग्री फॉर एग्जांपल कर ली, लेकिन एक यूनिवर्सिटी और दूसरी यूनिवर्सिटी में बहुत फ़र्क होता
है। राइट।
तो जब वो जॉब मार्केट में आते हैं तो कहने को तो BSc है, लेकिन असल में वो दोनों में फ़र्क है। तो वो स्किल्स उसी समय आती हैं। तो उस समय कुछ लोग घबरा जाते हैं, डर जाते हैं, क्योंकि वो फेस नहीं कर पाते, और कुछ लोग हैं जो इस पीरियड को बिना एक्सपेक्टेशन के सीखने की कोशिश करते हैं। वहाँ पर अगर आपकी रुचि है उसमें तो आप उसको खेल खेल में सीखेंगे। और अगर आपकी एक्सपेक्टेशन है कि पहले दिन से ही मेरी शुरुआत हो, सारे मुझे अप्रिशिएट करें, तो फिर जब वैसा नहीं होगा तो आप में इनसिक्योरिटी और डर आनी शुरू हो जाती है।
बिल्कुल।
तो उसके लिए एक तो ये है कि आप थोड़ा सा अप्रेंटिसशिप का पीरियड समझ के पहले कुछ वर्षों को चलें। दूसरा है, बहुत सारी चीज़ों को मिक्स ना करें। कई बार हम देखते हैं कि लोग ये सोचते हैं कि अगर मैं ये जॉब कर रहा हूँ, इतना कमा रहा हूँ, तो इसका मतलब है मेरी अच्छी मैरिज होगी। इन चीज़ों को लिंक कर देते हैं, या मेरी इज्जत होगी समाज में, विच इज़ नॉट ऑलवेज ट्रू। कुछ हद तक शायद दूसरों की एक्सपेक्टेशन ऐसी होती है, लेकिन अगर आप ये समझ के चलें कि मैं अच्छा काम कर रहा हूँ और अप्रिशिएट हो रहा हूँ, और उस वजह से मुझ में डर कम है, तो चाहे आपकी जॉब चाहे आपकी मैरिड लाइफ, उसकी शुरुआत अलग रूप से होगी।
ओके।
और वहाँ पे फिर जो इनसिक्योरिटी और फियर है उसमें होने के कम चांसेस है।
दिस इज़ अमेजिंग। आई थिंक ये पर्सपेक्टिव हमने आज तक कभी इस तरह से इसे नोटिस नहीं किया था। दिस इज़ सो ट्रू कि ज़रूरी नहीं है कि एक सर्टन पैकेज अगर मेरी ज़िंदगी में है तो मेरी पर्सनल लाइफ भी ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी विदाउट एनी एफर्ट्स, या सोसाइटी मुझे उतना ही ऊँचे दर्जे से देखेगी। रियलिटी ये है कि हर एक पर्सपेक्टिव आपकी ज़िंदगी का आपके एफर्ट्स मांगता है। हर पहलू ज़िंदगी का इम्पॉर्टेंट है, चाहे वो पर्सनल लाइफ हो या प्रोफेशनल लाइफ हो। अब प्रोफेशनल लाइफ की तो हमने बात कर ली, अब थोड़ा सा पर्सनल लाइफ की बात करें। अब बच्चे हो चुके हैं, बच्चे बड़े भी हो चुके हैं, अब एक इनसिक्योरिटी आती है कि क्या ये बच्चे मेरे साथ ज़िंदगी भर रहेंगे। लड़की अगर है तो वो तो जाएगी दूसरे घर, इनकी थॉट प्रोसेस रहती है ये तो पराई है, एक ना एक दिन चली जाएगी। लेकिन लड़कों पर बहुत ज़्यादा उम्मीदें टिकी होती हैं कि वो मेरे घर को आगे बढ़ाएंगे, मेरे कुल को आगे बढ़ाएंगे, मेरे साथ रहेंगे, बुढ़ापे में मेरा साथ देंगे। ये जो उम्मीदें हैं ये किस हद तक सही हैं, और यही इनसिक्योरिटीज़ पैदा करते हैं।
अगर हम पिछले 20 से 25 वर्षों की सोसाइटी की जर्नी को देखें, हम अपने बच्चों को बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं जितना हमारी क्षमता है, लेकिन क्या गारंटी दे रहे हैं कि जिस जगह पे मैं काम कर रहा हूँ उस जगह पे उसको ही अपनी क्षमता के अनुसार अच्छी जॉब मिलेगी। अगर मान लीजिए वो इंडिया के बाहर पढ़ रहा है, तो क्या वो वापस आएगा, क्या वो आके यहाँ पे सेटल हो पाएगा। अगर हमने उसको कोई हुनर ही सिखाया है तो कल वहाँ पर जहाँ पर कि उसकी ज़्यादा ज़रूरत है वो वहीं रहेगा। उस समय में उससे ये एक्सपेक्ट भी करना कि वो हमारे साथ ही रहेगा, और बड़े बड़े शहरों में तो यहाँ तक देखा गया है कि इतने लंबा रोज़ का आना जाना होता है कि कई बार एक शहर में रह के भी कोशिश की जाती है कि बच्चा, लड़का खास तौर पे, थोड़ा सा दूर रहे ताकि वो अपने काम के प्रति ज़्यादा समय दे पाए।
करेक्ट।
अदरवाइज रोज के आने जाने में अगर उसके 3 या 4 घंटे लग रहे हैं तो उतना समय नहीं दे पा रहा। प्लस कई बार अगर हमने एक एक्सपेक्टेशन के हिसाब से उसको अपने पास पूरी ज़िंदगी रखने के प्लान बनाए हैं तो वो कहीं ना कहीं बोझ है।
ऑन दी कॉन्ट्ररी, हम ये नहीं सोचते कि हमको उसको साथ में रखना है, हम ये सोचते हैं कि वो मुझे अपने साथ रखे। ये भी एक बहुत डिफरेंट पर्सपेक्टिव है जो एक्सपेक्ट करते हैं पेरेंट्स, जब बेटा बड़ा हो जाए तो मुझे अपने साथ रखे, क्योंकि वो भी रिस्पॉन्सिबल बन चुका है, आज वो भी अर्न करता है, एक सर्टन पैकेज है उसकी ज़िंदगी का, तो मैंने उसे पूरी ज़िंदगी पाल पोस के अपने साथ रखा है तो उसे अब मेरे साथ रखना चाहिए। दिस इज़ आई डोंट नो ये किस हद तक सही है।
देखिए, एक जनरेशन तक ऐसे पैटर्न्स चले और ऐसे पैटर्न आमतौर पर भारत में ज़्यादा पाए जाते हैं या भारत जैसे देशों में ज़्यादा पाए जाते हैं। बहुत ज़्यादा वेस्टर्नाइज्ड कंट्रीज जो हैं,
एग्जैक्टली वहाँ पे तो 17-18 में बच्चे अपनी इंडिपेंडेंट लाइफ जीने लगते हैं।
वैसे अगर देखा जाए तो ह्यूमन बीइंग्स में ही सिर्फ ये घर में संभालने वाली बात है। कोई भी पक्षी अपने बच्चों को अपने घोंसले में हमेशा के लिए पाल के नहीं रखता।
अच्छा,
एक स्टेज के बाद
वो चले जाते हैं।
एक स्टेज के बाद सारे चले जाते हैं।
वाओ, राइट।
सारे पशु, सारे पक्षी जो हैं, वो अपने बच्चों को ट्रेन करते हैं अपनी जिंदगी अपने आप जीने के लिए और उसके बाद उनको छोड़ देते हैं। ये इनसिक्योरिटी नहीं होती कि अच्छा थोड़े दिनों के बाद वो मेरे आसपास झुंड में रहेगा और मेरी रक्षा करेगा। यहाँ पे कुछ तो एक्सपेक्टेशन ये है कि उम्र के साथ साथ शायद मेरी क्षमता कम होती जाएगी, जो पहले समय तक सही था। लेकिन अगर हम देखें तो लोगों की उम्र जो है जीने की, जिसको लाइफ एक्सपेक्टेंसी कहते हैं, वो कई कई गुना बड़ी है। जो जब भारत आज़ाद हुआ था तो उस समय लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो थी वो 32 साल के करीब की थी, आज वो कम से कम 67, 68, 67, 68 की हो गई, तो 2 गुना से ज़्यादा बड़ी है। तो पहले के समय में बहुत कम पीरियड था जबकि पेरेंट्स इतने समय तक अपने बच्चों के साथ रहते थे, अभी वो समय बढ़ता जा रहा है। दूसरी बात यह है कि मोबिलिटी बहुत बढ़ती जा रही है। पहले आप जिस शहर में थे उसी शहर में अपना काम चलता था, अगर जिस हुनर में थे तो आपके ज्वाइन कर लेता था, लेकिन अब हमें ये महसूस होना शुरू हुआ कि उनको एक ढील देने की ज़रूरत है, उनको अपनी ज़िंदगी जीने की ज़रूरत है,
राइट।
लेकिन यहाँ पर आके हम कई बार उनको रोक लेते हैं। अगर उनको आपसे प्यार है और इस डर से कि समाज क्या कहेगा, इस डर से कि मेरे माँ बाप मुझसे खुश नहीं रहेंगे, अगर आप उसे रोकने की और अपने साथ, मैं वर्ड यूज़ करूँगा, चिपकाने की कोशिश करते हैं तो ज़्यादा देर तक नहीं चलता, रिजेंटमेंट आती है। और अगर वो रिजेंटमेंट लड़के में आती है तो फिर शायद उसकी वाइफ में भी आएगी। लेकिन अगर, क्योंकि उसका आपसे प्यार है, जब भी मौका मिलता है वो आपके पास आना चाहता है, रहना चाहता है, तो वो प्यार जो है वो आपके पास उसको हमेशा खींच के लाएगा और वो जो एक्सपीरियंस है, वो जो रिलेशनशिप है, वो सुखद होगी। इनसिक्योरिटी इस समय में मिडिल एज में जो आनी शुरू होती है, एक और होती है बीमारियों की, एक और होती है लोनलीनेस की। अगर आपने बचपन से ले के 20 साल के उम्र के बच्चे तक, जबकि वो एडल्ट भी हो गया है, अब वो वोट भी कर सकता है, लेकिन आप उसे बच्चा ही समझ रहे हैं और आप उसे अपने साथ रखने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि वो आपकी ज़िंदगी का फोकस है, तो जब वो फोकस ख़त्म हुआ तो अचानक लोगों के पास बहुत समय होना शुरू हो जाता है और उन्हें नहीं समझ आता कि वो क्या करें, तो वो भी एक फियर है। तो अगर शुरू से ही अपनी ज़िंदगी को उन चीज़ों में अगर लगा के रखें तो वो फियर नहीं रहेगा। प्लस हम इंडिपेंडेंट होंगे। इंडिपेंडेंट सिर्फ बच्चों को नहीं होना होता, बड़ों को भी अपनी ज़िंदगी जीने के लिए इंडिपेंडेंट होने की ज़रूरत है।
बिल्कुल, आई थिंक ये आपने बहुत बड़ी बात कही है, क्योंकि मुझे लगता है कि मैं जानती हूँ कि एक मैं बिल्कुल उन पेरेंट्स को रिस्पेक्ट करती हूँ जो अपनी पूरी ज़िंदगी बच्चों को पाल पोस कर बड़ा करके उन्हें एक बेहतर इंसान बनाने में इतनी उनकी मदद करते हैं। लेकिन वही क्वालिटी जो सबसे बड़ी क्वालिटी होती है लेट गो करने की, वो बहुत सबसे ज़्यादा मुश्किल पेरेंट्स के लिए होता है, क्योंकि उनके साथ इतना उनका मोह जुड़ा होता है। लेकिन ये एक आर्ट है जो आपको फियर से दूर रखेगा, डर से दूर रखेगा। अगर आपको लेट गो करने की क्वालिटी होगी तो वो चीज़ आपको डर नहीं देगी। एम आई राइट?
एक्चुअली जो आपने लेट गो की बात की, बहुत खूबसूरत बात है। लेट गो का मतलब तोड़ना नहीं है। लेट गो का मतलब है कि अपने बीच में इतना फासला रखना कि दूसरे को भी अपनी ज़िंदगी जीने का मौका मिले, और उस फासले में प्यार हो, उस फासले में रिस्पेक्ट हो, म्यूचुअल केयर एंड कंसर्न हो, जिसकी वजह से वो आपके साथ जुड़ा हुआ। अगर उसे ये लगेगा कि आप उसकी भावनाओं को रिस्पेक्ट देते हैं, आप उसकी इंडिपेंडेंस को रिस्पेक्ट देते हैं, तो उस रिस्पेक्ट की वजह से वो हमेशा आपके साथ जुड़ा रहेगा।
करेक्ट।
और अगर वो दबाव के अंदर होगा, डर के अंदर होगा कि पेरेंट्स दुखी हो जाएंगे, इसकी वजह से होगा, तो वो कश्मकश में चलता रहेगा। और एक समय था ज़रूर जबकि इनकम्स कम होती थी, तो उस वजह से ये था कि एक स्टेज के बाद पेरेंट्स की इनकम ख़त्म हो जाएगी और उसकी वजह से किसी और को उनको सपोर्ट करने की ज़रूरत पड़ेगी।
एग्जैक्टली।
तो एटलीस्ट उन जगहों पर जहाँ पे कि वो डर नहीं है, या उन जगहों पर जहाँ पे कि बच्चे एटलीस्ट मॉनिटरली उनको सपोर्ट करने के लिए रेडी हैं, या उनको जब भी ज़रूरत हो उसके लिए रेडी हैं, और अगर मौका मिलता है, और अगर मान लीजिए दोनों माँ बाप या बाप और लड़का इकट्ठे बिजनेस कर सकते हैं और एक दूसरे की मदद कर सकते हैं, तो ज़रूर। लेकिन उसकी वजह से, अपने डर की वजह से उनको पकड़ के रखना, वो उनके साथ भी ज़्यादती है और साथ ही साथ अपने डर को और बढ़ाना है।
True.
क्योंकि जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाएगी, उस बढ़ती उम्र के साथ फिर आप में ये डर कि अच्छा मेरे को कुछ हो गया किसी दिन तो कौन होगा जो मेरे पास आएगा।
ये आपने एकदम करेक्ट बात कही। इधर से ही मेरा दूसरा सवाल आता है कि कुछ पेरेंट्स के अंदर मैंने देखा है, खास करके जो फादर्स होते हैं, अगर वो बिजनेसमैन हैं तो उनके दिमाग में रहता है कि लड़का मेरा बिजनेस संभाले। लड़का सपोज जो बेटा है वो अगर कोई जॉब करना चाहता है या अपने पैशन को आगे सस्टेन करना चाहता है, या कोई प्रोफेशन है जो उस उनके हब बिजनेस से अलग है, तो उन्हें फोर्स किया जाता है कि नहीं, बिकॉज क्योंकि वो डर रहे हैं कि उनके बिजनेस को आगे कौन चलाएगा, वो जब नहीं रहेंगे तो ये बिजनेस आगे कौन कैरी फॉरवर्ड करेगा। तो ऐसे में बेटा सही है या डैड सही है, क्योंकि ये बहुत उनकी भी गलती नहीं है एज अ फादर, और बेटे की भी गलती नहीं है, तो हु इज रिस्पॉन्सिबल।
देखिए, अगर ये बात एक संवाद के साथ हो सकती है कि किस प्रकार से इसमें दोनों का फायदा है, और कई बार ऐसा होता है कि बेटे का कोई पैशन नहीं है लेकिन क्योंकि उसने कोई और चीज़ सीखी है, और उस वजह से अब उससे कहना कि अच्छा आपने सीख तो ली, आपने प्रोफेशन तो बना लिया, उसमें बहुत अच्छे निकले, आपको उसकी तरफ रुझान भी है, लेकिन अब वो होने के बाद आप उधर से हट के इधर आ जाओ।
राइट। उतना जितना आपने करना था आप कर लिया, अब बिजनेस संभालो वो।
लेकिन मान लीजिए आपने किसी व्यक्ति को जो एक अच्छा डॉक्टर बनना चाहता है और वो डॉक्टर बन भी गया, अब सडनली आप कहते हैं कि आप आके मेरे एक्सपोर्ट इम्पोर्ट के बिजनेस को संभालना शुरू कर लें, तो ये कहीं ना कहीं उसके साथ भी जाते हैं,
एब्सोल्युटली
समाज के साथ भी जाते हैं। तो यहाँ अगर ये बात पहले ही हो जाती है, और उसमें सिर्फ हो जाने का मतलब ये नहीं है कि आपने उसको बुलाया और बुला के कहा कि ये करना है, आपने उससे पूछा कि वो क्या करना चाहता है, और ये हो जाने के बाद नहीं, बढ़ जाने के बाद नहीं, जिस दिन उसको जॉब मिल गई और वो किसी और सिटी में जा रहा है उसके बाद नहीं, लेकिन पहले से अगर वो होना शुरू हो जाता है तो उसकी एक्सपेक्टेशन और उसके मन की दिशा भी वही हो जाती है।
करेक्ट।
कई बार ये भी हो जाता है कि अगर मान लीजिए दोनों के बीच में संवाद हुआ, तो वो 5-6 वर्षों में उसका जिस तरफ रुझान है, जैसे आपने बिजनेस फैमिलीज की बात की, तो उससे रिलेटेड कोई चीज़ भी की जा सकती है।
राइट। ताकि उसे और ज़्यादा सर्टिफाइड वे में वो आगे बढ़ा सके, कोई सर्टिफिकेट्स लेना है, कोई क्वालिफिकेशन लेना है, सपोज़ कोई MBA बनना है, ताकि वो अपने बिजनेस को और अच्छी तरह से संभाल सके। दिस इज़ अ राइट वे, वो राइट डायरेक्शन है कि किस तरह से अपने फैमिली बिजनेस को वो और ज़्यादा सपोर्ट कर सकते हैं।
वहाँ पर मैं कहूँगा, क्योंकि बड़े जो हैं उनको ये पहल करनी पड़ेगी। आमतौर पे जो बच्चा है या टीनेजर है उसमें डर होते हैं अपने माँ बाप को दुखी ना करने का, या अगर वो कुछ ऐसा करता है तो उनसे डांट पड़ेगी इसका, या शायद वो अगर उस डायरेक्शन में जाए या उनसे बात करे और वो सक्सेसफुल ना हो तो कल यही बात उसको फिर से कही जाएगी, शायद पूरी ज़िंदगी कही जाएगी, उस चीज़ का डर। तो जब भी कोई चीज़ बिना डर के एक खुले माहौल में डिस्कस हो जाती है तो दूर तक जाती है। और वहाँ पे इसीलिए ज़रूरी है कि शुरू से ही, और ये बात सडनली एक स्विच ऑन की तरह नहीं आएगी कि अब आप 16 साल के हो गए आइए बैठें बात करेंगे, ये बात बचपन से ही शुरू हो जाती है उन परिवारों में कि हर चीज़ को खुल के एक बार डिस्कस किया गया, ताकि उस छोटे बच्चे को भी एक इंडिविजुअल समझा गया, उसकी जो सोचने के ढंग है उसको एक प्यार से मोल्ड किया गया, क्योंकि आपके पास एक्सपीरियंस है, इसलिए नहीं कि आपके पास पावर है, इसलिए नहीं क्योंकि आप बड़े हैं। तो जब वो होना शुरू होता है तो आमतौर पर ऐसा देखा गया है कि फैमिलीज जो हैं सिर्फ ये नहीं कि बिना डर के जीती हैं, लेकिन जब खुल के जीती हैं तो उसमें जीने का मज़ा भी ज़्यादा होता है, क्रिएटिविटी भी ज़्यादा होती है और अचीवमेंट्स भी ज़्यादा होती है। और जो दूसरा डर आपने बात की कि मेरे को क्या होगा, मेरे को कुछ हो गया तो, देखिए इमरजेंसीज के लिए कोई गारंटी नहीं है। बहुत ज़्यादा मौतें जो जिस जगह पे होती हैं वो जगह का नाम है हॉस्पिटल क्योंकि सारे बीमार वहाँ पे आते हैं। तो अगर कोई इमरजेंसी होगी तो आस पड़ोस वाला, आपके जूनियर्स, आपके काम करने वाले फ्रेंड्स, रिश्तेदार, कोई ना कोई उस समय आ सकता। प्लस आज के समय में कोई भी जगह 22 से 24 घंटे की फ्लाइट से दूर नहीं है या ट्रैवल से दूर नहीं है, और उतनी देर में अगर कुछ होना है तो वो चीज़ तब भी हो सकती है अगर वो एक ही घर में आपके साथ भी रह रहा है।
तो भी सही बात है।
तो उस इनसिक्योरिटी के साथ आप पूरी ज़िंदगी को शेप करें और उस डर के साथ आप कॉन्स्टेंटली रोज़ सोच के हर समय हर चीज़ को बदलते जाएं, उसका फ़ायदा नहीं है। प्लस आई वुड ऑल्सो से कि दो तीन चीज़ें और थोड़ी सी ज़रूरी हो जाती हैं। पहला कि एक फाइनेंशियल सिक्योरिटी अपने लिए वो ज़रूर रखी जाए। वहाँ पर जब आप सिर्फ दूसरों पे या बच्चों पे भी आश्रित होते हैं तो हर समय आपके मन में डर होता है कि अगर रिश्ता ख़राब हुआ, अगर वो अपनी फैमिली की तरफ ज़्यादा झुक गया, या अगर कल हमारे में मनमुटाव हुआ तो क्या होगा। तो वो सिक्योरिटी को जिस प्रकार से भी समय के साथ साथ, मैं तो कहूँगा जिस दिन से हम जॉब शुरू करते हैं उस तरफ एक सिक्योरिटी का पहलू ज़रूर रखें। दूसरी एक सिक्योरिटी है, वो सिक्योरिटी है आपका समाज, लोगों से बना के रखें। कल किस व्यक्ति ने किस रूप में आपकी मदद करनी है आप नहीं जान सकते, और वो व्यक्ति किस हद का होगा, किस पद का होगा, ये कोई नहीं कह सकता
जी।
सो एक सकारात्मक रिश्ता जो है, क्योंकि उस समय में आप रिश्ता नहीं बना पाएंगे, वो पहले से होगा तो लोग आपके पास होंगे, इकट्ठे होंगे।
करेक्ट।
तीसरा, जहाँ तक हो सके अपने आप को कम से कम समय दें अकेले बैठ के अपने इन डरों को अपने ऊपर हावी होने का। क्योंकि अगर आपके पास समय है और आप अकेले बैठ रहे हैं तो जो जो गलत हो सकता है मन में उस चीज़ के बारे में ज़्यादा विचार आते हैं डर के रूप में। क्योंकि हम चाहते हैं कि हम कोई डर ना हो, तो माइंड जो है वो बैठ के फिर लिस्ट खोलनी शुरू करता है, अच्छा ये भी डर है अब इसका क्या करोगे। तो अगर आपने जो कदम ले सकते हैं वो ले चुके हैं तो उसके बाद कुछ चीज़ें जो सकारात्मक रूप से आप रोज़मर्रा के ज़िंदगी में कर सकते हैं वो ज़रूर करें। और चौथी चीज़ कि अपने आप को एक दिशा देने के लिए मेडिटेशन का, साइलेंस में जाने का, ज़िंदगी का हायर पर्पज़ क्या है, इस चीज़ का सहारा ज़रूर लें।
ब्यूटिफुल। आई थिंक ब्रदर आज का जो हमारा एपिसोड रहा है काफ़ी ही होलसम तरीके से हमने डर को समझने की कोशिश की है, इमोशंस को समझने की कोशिश की है कि कैसे अंडरलाइनिंग लेवल पर इमोशंस हमारे ज़िंदगी को प्ले कर रहे होते हैं और हमारे डिसीजंस जो होते हैं ज़िंदगी के वो इन्हीं इमोशंस पर आधारित होते हैं। तो हमें अपनी नींव को सही रखना है तो हमारी ज़िंदगी खुशियों से भर जाएगी। थैंक यू सो मच ब्रदर, थैंक यू फॉर योर वैल्युएबल टाइम। ओम शांति।
ओम शांति।
दोस्तों, आज के एपिसोड में हमने जाना कि कुछ बातें ऐसी होती हैं जिन पर आज तक हम नज़रअंदाज करते आए, जैसे कि हम मानते आए कि डर तो नेचुरल है, लेकिन रियलिटी तो ये है दोस्तों कि ये एक ऐसा इमोशन है जो आपको धीरे धीरे अंदर से खोखला करता जाता है। ज़रूरी ये है कि डर जो आपको हर रिलेशनशिप में, हर प्रोफेशन में या हर जगह पर रोकता है चीज़ों को करने के लिए, उन चीज़ों पर आपको पुश करके अपने आप को डर से आगे लेकर जाकर डिसीजन लेने की ज़रूरत है। फिर आप देखेंगे जीत आपके कदम चूमेगी। अगर आपके कोई भी सवाल हैं या कोई भी कमेंट्स हैं तो आप हमारे फेसबुक पेज ज़िंदगी बने आसान पर हमारे साथ कांटेक्ट में आ सकते हैं। ओम शांति।